السلام علیکم، یہ پارٹ ٹو ہے کتاب کمانڈو فور۔ یہ کتاب نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ پیشکش قرطبہ آڈیو لائبریری، آواز پرویز احمد خان، مصنف منیر احمد راشد۔ دیگر معلومات یا کتابوں کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 03212138225۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ ٹو۔ منصوبہ اچھا ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ ٹینکوں کو تباہ کرنے کے لیے میں جاؤں۔ کمانڈو ٹو اس کے لہجے سے اس کی بات کا مطلب سمجھ گیا، کہنے لگا، سر جہاد ہمارا راستہ ہے اور شہادت ہماری آرزو۔ ہم اللہ سے سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ وقت جہاد ہے، انشاءاللہ ہم سب کو شہادت نصیب ہوگی، مگر آپ اپنے مشن کو یاد رکھیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس فوری مارکے کے بعد بھی آپ کو زندگی بخشی تو مشن ضرور پورا ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے آپ کا زندہ رہنا ضروری ہے۔ بم باندھ کر ٹینکوں کے نیچے ہم لیٹیں گے، آپ فائرنگ کریں، اور اگر اللہ زندگی دے تو اصلی مشن کو پورا کریں۔ سر یہ میری ذاتی خواہش ہے، کمانڈو ٹو نے بڑی لجاجت سے کہا۔ اللہ کے راستے میں پہلے جان دینے کے لیے ہمارے درمیان یہ جذباتی کشمکش بڑی متاثر کن تھی۔ ہر شخص کی خواہش تھی کہ وہ پہلے اپنے وطن عزیز پر قربان ہو، وہ سب سے پہلے اپنے مال کی حقیقت سے جا ملے، مگر وقت کم تھا اور دشمن بالکل سر پر آن پہنچا تھا۔ اس لیے بحث و تکرار کو چھوڑتے ہوئے کمانڈر ٹو کی تجویز پر عمل درآمد شروع کیا گیا۔ ہم لوگوں نے اپنے اپنے تیلوں سے دستی بم نکالے اور کمانڈو ٹو اور کمانڈو تھری کے جسموں پر مختلف جگہوں پر بہت سے بم باندھ دیے۔ دو دو بم لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں تھامے اور باہر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ بڑا رقت انگیز منظر تھا۔ سنسان جنگل میں چار جوان کھڑے تھے جو رنگ و نسل کے اعتبار سے مختلف تھے، زبان اور علاقے کے لحاظ سے جدا تھے، قوم اور برادری میں الگ الگ تھے۔ ان کے درمیان صرف اور صرف ایک ہی رشتہ تھا، دین کا رشتہ، دین کی خاطر حاصل کیے گئے وطن کا رشتہ، وطن کی حفاظت کے لیے بنائی گئی تنظیم کا رشتہ۔ شاید چار سگے بھائیوں میں بھی اتنی محبت اور ایک دوسرے پر جان نچھاور کر دینے کا وہ لازوار اور بے مثال جذبہ نہ پایا جاتا ہو جتنا ان چاروں میں تھا۔ ہم لوگ محبتوں کی انتہائی شدت ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے، اور پھر کمانڈو ٹو اور تھری اپنے مشن پر روانہ ہو گئے۔ میں اور کمانڈو ون جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹ کر جھاڑیوں میں چھپتے چھپاتے ایک ٹیلا نما جگہ پر پہنچے۔ یہ جگہ بھی گھنی جھاڑیوں سے ڈھکی ہوئی تھی، مگر اونچی ہونے کی وجہ سے ہم یہاں سے بآسانی دور تک دیکھ سکتے تھے۔ ہم نے خود کو جھاڑیوں میں چھپاتے ہوئے تمام بم نکال کر اپنے قریب رکھے، اسٹین گنوں کو تھاما اور فائرنگ کے لیے بالکل تیار ہو گئے۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارے دونوں ساتھی جھاڑیوں کے درمیان سے کرالنگ کرتے ہوئے تیزی سے دشمن کی جانب بڑھ رہے تھے، اور پھر دشمن کے ٹینکوں سے کوئی 30-40 قدم کے فاصلے پر وہ دونوں زمین پر چت لیٹ گئے۔ انہوں نے خود کو گھنی جھاڑیوں میں اچھی طرح چھپا لیا تھا۔ ان کے دونوں ہاتھ اطراف میں پھیلے ہوئے تھے اور ان میں بم دبے ہوئے تھے۔ ہم لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے دلوں کو سنبھالے دشمن کے ٹینکوں کو ان کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ دیو پہ کر ٹینک شور مچاتے اور جھاڑیوں کو رونتے ہوئے مست ہاتھی کی طرح چلے آ رہے تھے۔ موت، حیرت انگیز موت لمحہ برابر ان سے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ ٹینک بالکل ان کے سروں پر آن پہنچے، ہماری ساری قوت سمٹ کر ہماری آنکھوں میں آ گئی تھی، ہمارے دل ہماری کنپٹیوں میں دھڑک رہے تھے۔ ہم نے دستی بم کو مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں پکڑا اور ٹن کو دانتوں میں دبا لیا۔ ہم کسی لمحے بھی حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ سارے جسم کے پٹے تن گئے تھے اور ایک عجیب سا سرور روح میں حائل کر گیا تھا۔ ہمارے دونوں ساتھی اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے حاصل کیے گئے وطن کی خاطر خود بڑھ کر موت کے منہ میں جا بیٹھے تھے، مگر کیسی سہانی موت کہ ادھر جسم سے جان کا ناطا ٹوٹا، ادھر رحمت خداوندی نے بڑھ کر اس شہید روح کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ ٹینک اب ان سے چند قدم کے فاصلے پر تھے اور مسلسل آگے کی جنب آ رہے تھے۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ ٹینکوں کے ساتھ بکتر بند گاڑیاں بھی ہیں اور اسلحے سے لدے ہوئے ٹرک بھی۔ چار مجاہد اپنے سے ہزار گنا زیادہ بڑی قوت کے سامنے ڈٹ گئے تھے۔ پھر ہماری آنکھوں نے وہ کچھ دیکھا جو شاید تاریخ نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ دو ٹینک بیک وقت دونوں مجاہدوں کے جسموں پر چڑھ گئے، اور پھر جسموں سے بندھے ہوئے کئی بم ایک زبردست دھماکے سے پھٹے۔ اللہ کے سپاہی اپنے رب سے جا ملے، مگر دشمن کو بھی جہنم واصل کر گئے۔ دونوں ٹینکوں کے پرخچے اڑ گئے تھے، گرد اور دھوئیں کا بگولا سا اٹھا اور آسمان کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ پھر اس بگولے کی جڑ میں سرخی بھی نظر آنے لگی، سرخ سرخ شعلے تیزی سے لپک رہے تھے۔ حملے کے لیے بالکل تیار ہونے کے باوجود اپنے عظیم ساتھیوں کی سجیب اور دردناک موت پر شدت کرب سے بے اختیار ہماری آنکھیں بھیج گئیں۔ دل درد کی حدت سے پگھلنے لگا اور دماغ انتقام کی شدت سے جلنے لگا۔ मगर सिर्फ एक लम्हा इसके अकीदत में गुजरा, फिर उसके बाद तो हमने गोया दस्ती बमों की बारिश ही कर दी। एक जज्बा था फना हो जाने या फना कर देने का जज्बा, इतनी फुर्ती और तेजी न जाने कहाँ से हमारे बदन में आ गई थी। एक बम अभी हवा में ही होता था कि हम उसके पीछे दूसरा और तीसरा बम रवाना कर देते थे। धमाके ही धमाके हो रहे थे, हम अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करते तो यूं लगता जैसे सारा जंगल हमारे नारों का जवाब दे रहा है। जंगली जानवरों का शोर, इंसानों की चीखो पुकार और बमों के धमाकों की तहम सदा। हम दो आदमी हर तरह से दुश्मन पर भारी पड़ रहे थे। अल्लाह की नुसरतान पहुंची जो वाहिद भी है और हकीकत दर हकीकत सुपर पावर भी। दुश्मन एक छोटा सुपर पावर के असले में घूंड में न जाने क्या सोच के चला था, मगर अब बौखलाहट और खौफ के मारे जवाबी कार्रवाई करने का भी होश नहीं था। फिर शायद हमारा फेंका हुआ कोई बम उनके असले से लोड ट्रक पर गिरा और धमाके का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। जंगली झाड़ियों ने भी आग पकड़ ली थी जो इंतहाई तेजी से फैल रही थी। हम हालांकि नदी के दूसरी तरफ थे, मगर किसी लम्हे भी कोई चिंगारी सरवा कर जंगल को जहन्नम का नमूना बना सकती थी। अब वहां रुकने की ना तो फुर्सत थी ना जरूरत, क्योंकि खुद दुश्मन का असला उस पर अजाब इलाही बनकर बरस रहा था। इसलिए हम दोनों ने तेजी से जो मुमकिन हो सका सामान समेटा और नदी में कूद गए। हम पानी के बहाव के साथ साथ जनूब की समत तेज रफ्तारी से तैर रहे थे। धमाकों की आवाजें और जंगल का शोर आहिस्ता आहिस्ता हमसे दूर होता जा रहा था। हम देर तक तैरते रहे और काफी दूर तक निकल आए। जिस रफ्तार से हम लोग तैर रहे थे वो किसी भी ओलंपिक रिकॉर्ड से दुगनी रफ्तार होगी। बहरहाल बहुत आगे जाकर हम लोग रुके और नदी से बाहर निकले। यहाँ जंगल ज्यादा घना नहीं था। हमने एक दरख्त के नीचे बैठकर अपने सांस दुरुस्त किया। उस कामयाबी पर अल्लाह के हजूर सजदा रेज हो गए, क्योंकि इतनी बड़ी कामयाबी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही के कर्म का नतीजा थी, वरना कहाँ दो अफराद और कहाँ लश्कर जर्रार। कमांडो वन ने मुबारकबाद देते हुए कहा, मुबारक हो कमांडो फोर, हमने बुजदिल और कमीने दुश्मन को नाको चने चबवा दिए। कमजोर दुश्मन ताकत के नशे में बदमस्त हमलावर होकर समझता था कि पाक धरती को अपने कदमों से नापाक कर देगा, मगर भूल गया था कि अल्लाह के शेरों से वास्ता पड़ा है। अल्लाह का सद एहसान और शुक्र है कि उसने हमारी मदद फरमाई। मैंने उसकी ताइद में गर्दन हिलाई। वो कहने लगा, मगर कमांडो टू और थ्री की कुर्बानी का हमारी कामयाबी में बहुत ज्यादा दखल है। कमांडो टू और थ्री का जिक्र आते ही हमारे दिल मलूल हो गए। कैसे अजीम लोग थे, कैसे बेलोस और बहादुर। बेशक जिस मुल्क में ऐसे जांसार जवान मौजूद हों उसे दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। हमने इन दोनों के हक में दुआएं मगफरत की और कमांडो वन ने थैले से ट्रांसमीटर निकालते हुए कहा, मैं मेजर साहब को सूरत हाल से आगाह करता हूँ। ट्रांसमीटर में मेजर साहब की फ्रीक्वेंसी सेट करने के बाद कमांडो वन ने अपना पैगाम नशर किया और मेजर साहब को अपनी तमाम कारगुजारी सुनाई। मेजर साहब बहुत खुश हुए, हमें खूब शाबाश दी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। हमारा मिशन अभी अधूरा था, यानी चौकी पर कामयाब हमला। मेजर साहब ने बताया कि उन्हें ताज़ा कमक पहुंच चुकी है और वो खुद बढ़कर हमला आवर हुआ चाहते हैं, इसलिए हमें भी चौकी तक पहुंचकर उन्हें गाइड करना चाहिए। हमसे पूछा गया था कि हम कब तक चौकी पहुंच सकेंगे। कमांडो वन ने फासले का अंदाजा करते हुए 1.5 घंटे का वक्त मुकर्रर किया और तय ये पाया कि अब से ठीक 1 घंटा 30 मिनट के बाद मेजर साहब की तरफ से हमला हो जाएगा और हमें चौकी के अंदर रहते हुए एक्शन लेना होगा। कमांडो वन ने ट्रांसमीटर ऑफ करके दोबारा बैग के अंदर रखा और मुझे इशारा करते हुए अपना सामान समेट कर उठा और चौकी की तरफ चलने का इरादा किया। मैं भी फौरन उसके साथ चल दिया। हम लोग तेज रफ्तार से फासला तय कर रहे थे। हमारे पास सिर्फ 1 घंटा और 30 मिनट थे, जिसमें हमें ना सिर्फ चौकी तक पहुंचना था बल्कि वहां के हालात से आगाही भी हासिल करना थी और ज़रूरी इकदाम करने थे। आग सारे जंगल में फैलती जा रही थी कि अल्लाह ताला की रहमत जोश में आ गई और एक मरतबा फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हम लोग कट बैग को कमर पर डाले, स्टेन गन्ने हाथ में थामे अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा थे। जू जू हम आगे बढ़ रहे थे जंगल घना होता जा रहा था। बारिश के पानी ने मिट्टी के साथ मिलकर कीचड़ की सूरत इख्तियार कर ली थी जो हमारे जूतों और कपड़ों से लिपटी पड़ रही थी, मगर हम किसी चीज़ की परवाह किए बगैर आगे और आगे बढ़ते रहे। अलबत्त घने जंगल और कीचड़ज़दा ज़मीन की वजह से हमारी रफ्तार में खासी कमी आ गई थी। 45 मिनट की भाग दौड़ के बाद हम चौकी के बिल्कुल करीब पहुँच गए। अब हमें रिंग रिंग कर आगे बढ़ना था। कुछ ही देर में हमें खारदार तारों की बाढ़ नजर आई जो चौकी को महफूज करने के लिए हदबंदी के तौर पर लगाई गई थी। हम क्रॉलिंग करते हुए वहां तक पहुंचे। कमांडो वन ने बैग से एक प्लास्टरनुमा कटर निकाला और तारों को 2-3 जगह से काट कर अंदर घुसने की जगह बनाई। हम लोग रिंग कर चौकी की हदबंदी के अंदर पहुंच गए। इस तरह खिसकते हुए अंदर काफी दूर तक चले गए। अब खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया था, हम लोग मौत की सरहद में आ गए थे। किसी लम्हे भी कोई अंधी गोली हमारी जिंदगी का चिराग गुल कर सकती थी, मगर हम मौत से नहीं डरते थे। हमने अपने रब के अलावा किसी से डरना नहीं सीखा था। मौत तो खुद हमसे डर कर भागती थी, और क्यों ना भागती, आखिर हम अल्लाह के मुजाहिद बंदे थे। ये एक अजीब मामला है कि इंसान जिस चीज़ की शदीद तमन्ना करता है उसका हसूल उसे मुश्किल नजर आता है। अगर कोई शख्स दौलत दुनिया की समेटने की कोशिश करता है तो दुनिया उससे भागती है, कोई ज़िंदगी की तमन्ना करता है तो मौत उसे आ लेती है, और जो मौत की तलाश में सरगर्दा रहते हैं ज़िंदगी उनके पीछे पीछे दौड़ती फिरती है। हम लोग मुसलसल आगे बढ़ रहे थे, दुश्मन की गाड़ियाँ और पैदल पहरेदार हमसे काफ़ी फासले पर घूम फिर रहे थे। चौकी क्या थी, पूरे का पूरा किला था। फौजियों की तादाद और तवीलों अरीज इमारत देख कर महसूस होता था कि किसी बहुत बड़ी छावनी में आ गए हैं। रनवे और हेलीपैड भी नजर आ रहा था। बेशुमार ट्रक, बक्सरबंद गाड़ियाँ और टैंक खड़े थे। यकीनन यहाँ असले का भी खूब जखीरा होगा, कमालोवन ने बनदर गैर चौकी का जायजा लेते हुए कहा। मेरा ख्याल है यहाँ एक बड़ा एमुनेशन डिपो है, हमारी फौज अगर साल भर भी लड़ती रहेगी तो यहाँ काबज ना हो सकेगी, इसलिए ज़रूरी है हम इस एमुनेशन डिपो को ख़त्म कर दें। फिर उसने ताई तलम नगाहों से मेरी तरफ देखा और मैंने असबाज में सर हिला दिया। हम दोनों ज़मीन पर लेटे हुए थे, दुश्मन के प्यादा सिपाही राउंड पर थे। फिर हमने देखा कि दो मुसल्ला फौजी टहलते और बड़े चुकन्ना अंदाज में इधर उधर नजर दौड़ाते हुए इस समय बड़े चले आ रहे थे जिधर हम लोग लेटे हुए थे। कमालो वन ने आंखों ही आंखों में इशारा किया कि हमें इन दोनों को घेरना है। मैंने हाँ के अंदाज में गर्दन हिला दी। घनी झाड़ियाँ और कीचड़ हमारी मददगार साबित हो रही थी। कमालो वन और मैं दो मुख्तलिफ सिमतों में झाड़ियों में छुप कर बैठ गए। मैंने देखा कि कमालो वन जिस झाड़ी में दुबका हुआ था वहाँ पानी काफ़ी था और वो गर्दन तक पानी में डूब कर बैठ गया था। सिर्फ उसकी गर्दन और स्टेन गन की नार बाहर झांक रही थी। इसी असना में मैंने देखा कि इन दोनों फौजियों में से एक ने अपने पेट को दबाया और दूसरे साथी को मखसूस इशारा करते हुए झाड़ियों की तरफ भाग गया। दूसरा फौजी जो कि सिख था मुस्कुराता हुआ इसी समय बढ़ने लगा जिधर हम थे। वो बेखबर सिपाही धीरे धीरे टहलता और कुछ गुनगुनाता हुआ चला आ रहा था खुद अपनी मौत की तरफ। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि मौत उसे चंद कदम की दूरी पर उसकी मुंतजर है। फिर वो हमारे बिल्कुल करीब पहुंच गया, बल्कि यूं कहना चाहिए कि मेरे और कमांडो वन के बिल्कुल दरमियान में। मेरी नजर इस सख्त फौजी पर मरकूज थी कि मैंने करीब ही इसे मेंढक के टराने की आवाज़ सुनी। ये आवाज़ उसी झाड़ी से बरामद हो रही थी जहाँ कमांडो वन छुपा हुआ था। कमांडो वन शायद मेरी तवज्जो अपनी जानब मजबूर कराना चाहता था और इशारा दे रहा था। फिर जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा तो एक बेसाख्ता कहका मेरे हलक से निकला। ये बड़ी ख़तरनाक बात थी। दुश्मन का मुसल्ला सिपाही मेरे सर पर खड़ा था और मैं दुश्मन के हसास तरीन इलाके में मौजूद था, तो इंतहाई नाजुक हालात थे। थोड़ी देर पहले ही दुश्मन का काफ़ी नुकसान हो चुका था और बुरी तरह खार खाए हुए था। मैं जो चंद लम्हे पहले शिकारी था खुद शिकार होने वाला था। इस बेवक्त की हंसी ने सारा काम खराब कर दिया था। दुश्मन का बेखबर सिपाही खबरदार हो चुका था। वो बुरी तरह चौंका और एक सेकंड के हजारवें हिस्से में वो तेजी से घूमा और गन का रुख मेरी तरफ करके गरजदार आवाज में चीखा, हैंड्स अप। मगर हैंड्स अप की आवाज़ उसके मुंह से पूरी तरह ना निकल सकी, बल्कि जो अल्फाज मेरी समाज तक पहुंचे वो हैंड्स आ। उसके साथ ही वो सिख जमीन पर आ रहा। उसकी इस पोजीशन पर मेरी हंसी और तेज़ हो गई, मगर मैंने मुंह पर सख्ती से हाथ रखकर आवाज़ को दबा दिया। मेरी इस कोशिश से आवाज़ तो मेरे हलक में दब गई, मगर मैं हंसी पर पूरी तरह काबू नहीं पा सका। कमानों वाला जल्दी से झाड़ी से निकला और इस मुर्दा फौजी को घसीट कर मेरी झाड़ी में ले आया और बोला, क्या बेवकूफ़ी है, हंसने का कौन सा मौका है। मैंने वह मुश्किल अपनी हंसी को रोकते हुए कहा, सर बुरा ना मनाइएगा, जरा सा जवाब ने टर्रा कर मुझे मुखातिब किया और मैंने देखा तो आप झाड़ी में दुबके हुए बिल्कुल एक बरसाती मेंढक लग रहे थे। बस मुझे हंसी आ गई, मगर ये हैंड सा कैसे मर गया। तब कमानो वन ने बताया, जैसे ही ये तुम्हारी हंसी सुनकर तुम्हारी तरफ मुतवज्जो हुआ तो मुझे खतरा लाहक हुआ कि अब फायर कर देगा। तब मैंने अपने शिकारी चाकू जो इसके पहले ही मैं निकाल चुका था फेंक मारा, जो कमर की तरफ से बिल्कुल उसके दिल पर लगा और ये वक्त जाया किए बगैर जहन्नम में चला गया। अच्छा अब दूसरे का क्या करें, मैंने पूछा। चलते हैं उसे भी जिंदगी के बंधन से आज़ादी दिलाते हैं, कमालो वन ने कहा। हम दोनों दोबारा दबे पाँव झाड़ियों की आड़ में छुपते छुपाते उस तरफ चले जिधर दूसरा इंडियन फौजी गया था। जल्द ही एक झाड़ी के पीछे हमें उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ, वो शायद बहुत ज़रूरी काम से फारिग हो रहा था। कमानों वाले मुझे आगे निकल जाने को कहा और खुद एन इस झाड़ी के हकम में चला गया जहाँ शिकार मौजूद था। चंद लम्हों के बाद मैंने करीब ही से भेड़िए के गुर्राने की आवाज़ सुनी और साथ ही इस हिंदू फौजी को झाड़ी में से निकलते देखा। वह एक हाथ में बंदूक थामे और दूसरे से अपनी पतलून चढ़ाने की कोशिश करता हुआ भागा आ रहा था। उसके मुंह से खौफजदा सी आवाजें निकल रही थी, बाप रे, राम राम, भेड़िया आ गया। फिर जूं ही वो भेड़ का बच्चा मेरे करीब पहुंचा तो मैंने झपट कर उसकी गर्दन दबोच ली और कमबख्त का टेंटवा दबा दिया। कमांडो वन भी मेरे पास पहुंच चुका था। अब हमने फैसला किया कि हम इन मुर्दा फौजियों की यूनिफॉर्म पहनकर उनकी चौकी तक पहुंचेंगे। सो मैंने उस लाश के कपड़े उतारे, उसकी जेब से फौजी शनाख्ती कार्ड निकाला और दीगर जरूरी सामान अपने कब्जे में किया। शनाख्ती कार्ड से उसका नाम मनोहर लाल मालूम हुआ। वो एक लांस नायक था। बहरहाल उसके मुतल्लिक कार्ड से हासिल शुदा मालूम मैंने अपने हाफजे में मुंतकिल की और उसे एक झाड़ी में धकेल दिया। कमांडो वन पहले ही दूसरे सिख फौजी का लिबास उतारने जा चुका था। मैंने जल्दी जल्दी सिंधु फौजी का यूनिफॉर्म पहना और कमांडो वन की तरफ चला। वो भी लबास तब्दील किया, अब सामने आईना रखे अपने चेहरे पर एक अदद दाढ़ी का इजाफा कर रहा था। एक चपटा का मेकअप बक्स उसके हाथ में था। आधे घंटे की मेहनत के बाद कमांडो वन उस मुर्दा सिख फौजी का हमशक्ल बन चुका था। जहाँ पर हम लोग बैठे थे वो जगह आम गुजरगाह से काफ़ी फासले पर थी। हमारे वहाँ क्याम के दौरान में कई फौजी गाड़ियाँ दूर दूर से गुजरी। मेकअप कर चुकने के बाद कमांडो वन ने गहरी नज़रों से खुद अपना मुआयना किया और मेरी तरफ रुक करके पूछने लगा, क्यों बाबू जी, असी सिख लगते हाँ ना? मैंने कहा, तुसी तो जमांदरों सिख लगते हो जी। मेरे जवाब पर कमांडो वन हंस दिया। फिर मैंने कहा, अब मैं आपको इस हिंदू फौजी का रोल प्ले करके दिखाता हूँ। तब मैंने एक हाथ में उस मुर्दा फौजी की राइफल और दूसरे हाथ में अपनी पतलून की बेल्ट पकड़ी और बेहम अंदाज में भागते हुए कहा, अरे बाप रे, राम राम, भेड़िया आ गया। मेरी अदाकारी देखकर कमांडो वन और ज्यादा जोर से कह कह लगाने पर मजबूर हो गया। हमारे पास वक्त बहुत कम था। तयशुदा डेढ़ घंटे में से 85 मिनट गुजर चुके थे और हमें जो कुछ भी करना था सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर करना था। कमांडो वन का दिमाग बिल्कुल हाजिर था और मनसूबे तकलीफ पा रहे थे। उसने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, कमांडो फोर्स साहब का तजर्बे से यह सबक मिला है कि हम सिर्फ और सिर्फ दुश्मन के असले को तबाह करने की कोशिश करें, इस तरह हम उन्हें कम वक्त में ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। लिहाजा अब तुम लोड ट्रकों को निशाना बनाओगे और मैं इस डिपो तक पहुंचने की कोशिश करूंगा, जो शायद इस इमारत के अंदर कहीं मौका क्या है। बहरहाल हमें दुश्मन को नेस्त नाबूद कर देना है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। हमें जो कुछ करना है इन्हीं 5 मिनट में करना है। मैं कहा, राइट सर, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। फिर हम लोग वहाँ से उठने ही वाले थे कि एक अजीब बात रूनमा हो गई। हमारे बाएं सिमत मगर की तरफ से अचानक धमाकों की सजाएं गूंजने लगी। हालांकि प्रोग्राम के मुताबिक मेजर साहब को अभी 5 मिनट के बाद हमला करना था, मगर यूं लगता था जैसे हमला हो चुका है। कमांडो वन भी कान लगाए आवाजें सुन रहा था। उसके माथे पर शिकनी नमूदार हो रही थी। वो किसी गहरी सोच में था। फिर उसने एक लंबी सांस मुंह से खारिज करते हुए कहा, शायद दुश्मन को हमारी फौज की पेशकदमी का इलम हो गया है, इसलिए इंडियन फौज ने खुद हमला कर दिया है। अब सूरत और भी ज़्यादा नाजुक हो गई है। हमें फौरन दुश्मन के हसास मकामात पर हमला करना होगा, ताकि ना सिर्फ उसकी सप्लाई लाइन कट जाए बल्कि वो दो तरफा हमले से भी खौफजदा हो, उसका एमुनेशन भी तबाह हो जाए। कमांडो फौज, जल्दी करो, बैग से टाइम बम निकाल कर सब में 5 मिनट का वक्त मुकर्रर कर दो। हरी अब, मैंने जल्दी से अपने कोट बैग में से टाइम बम निकाले, किट बैग में से टाइम बम निकाले और उनमें 5 मिनट का वक्त सेट कर दिया। कमांडो वन भी ये काम कर चुका था। हमने अपने बाकी मानदार सब सामान वहीं एक झाड़ी में छुपा दिया और तकरीबन दौड़ते हुए उस आम गुजरगाह तक पहुँचे जहाँ से ट्रक और जीपें गुजर रही थी। अभी हमें वहाँ खड़े चंद ही लम्हे हुए थे कि फौजी ट्रक आता हुआ नजर आया। कमांडो वन ने उसे हाथ के इशारे से रोका। हम दोनों को कूद कर ट्रक के पिछले हिस्से में सवार हो गए। यह ट्रक खाली था और अंदर इमारत की तरफ जा रहा था, शायद फौजी जवानों को लेने के लिए। हमारा इंडियन फौजी यूनिफॉर्म और मेकअप खूब काम आ रहा था। ड्राइवर को हम पर ज़रा शक न हुआ। जल्द ही हम अंदर इमारत के पास पहुंच गए। यहाँ अजीब भगदड़ मची हुई थी। फौजी जवान धड़ाधड़ अपनी बैरकों से निकल रहे थे और वहाँ पहले से मौजूद ट्रकों में सवार हो रहे थे। असला से लोड ट्रक भी एक जानब तैयार खड़े थे। सब ट्रक स्टार्ट थे और किसी भी लम्हे वहाँ से रवाना हो सकते थे। कमांडो वन ने कान में सरगोशी करते हुए कहा, खुदा हाफिज़ कमांडो फोर। मैंने भी जेरे रब अल्लाह ने गवान कहा और दोनों ट्रकों से नीचे कूद पड़े। नीचे आते ही दोनों का रुख मुख्तलिफ इतलाफ में हो गया। मैं ट्रकों की तरफ भाग रहा था जबकि कमांडो वन शायद अमार की तरफ जाने का इरादा रखता था। बहरहाल मैं ट्रकों के नज़दीक पहुँच गया। हंगामे और अफरा तफरी से फायदा उठाते हुए चार टाइम बम चार मुख्तलिफ ट्रकों में उछालने में कामयाब हो गया था और बाकी मानदा बम एक باقی ماندہ ایک بم میرے لباس کی جیب میں موجود تھا۔ یہ جرمنی ساز تھا، چپٹے تھے، چھوٹے چھوٹے مگر انتہائی طاقتور بم تھے۔ چار منٹ گزر چکے تھے اور صرف ایک منٹ باقی تھا۔ میں پانچواں بم ایک ٹرک میں چھاننے کے لیے ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا اور قریب تھا کہ بم میری جیب سے ٹرک میں منتقل ہو جاتا کہ ایک آفیسر کو جو شاید صوبے دار تھا میری حرکات اور سکنات پر شک ہو گیا۔ میں نے چاہا کہ جلدی سے وہاں سے کھسک لوں مگر صوبے دار صاحب نے مجھے روک لیا۔ پوچھنے لگا کون ہو تم؟ میں نے جواب میں اپنا نام اور نمبر فٹافٹ بتا دیا مگر پھر بھی یقین نہ آیا اور مختلف انداز سے سوال کرتا رہا۔ کافی وقت گزر چکا تھا، صرف 30 سیکنڈ باقی تھے۔ موت بم کی صورت میں میری جیب میں موجود تھی اور ٹرک بھی مجھ سے دور نہیں تھا جو کثرت سے بھرے ہوئے تھے اور صرف 30 سیکنڈ کے بعد یہاں سورہ اسرافیل بنتے تھے۔ جب جیب میں موجود بم سے میں جلد از جلد جان چھڑانا چاہتا تھا مگر صوبے دار صاحب مکمل انٹرویو کے موڈ میں نظر آتے تھے۔ میرے منہ سے شاید کوئی غلط شبد نکل گیا تھا کہ اس کا شک یقین میں تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ تیور بھی بدل رہے تھے، صرف 15 سیکنڈ باقی رہ گئے تھے۔ ٹائم بم کے پھٹنے کے ساتھ ہی میرا ٹائم بھی پورا ہو جاتا اور صوبے دار کا شک بھی دور ہو جاتا۔ ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اعصاب تھن گئے تھے، 5 سیکنڈ اور گزر چکے تھے۔ موت صرف 10 سیکنڈ کی مسافت پر کھڑی مسکرا رہی تھی اور دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی تھی۔ گھڑی کی ٹک ٹک موت کی چاپ محسوس ہو رہی تھی۔ میں کچھ کر گزرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ تب صوبے دار نے کہا اپنا کارڈ شو کرو۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ بیک پاک دو مختلف جیبوں میں ڈالے، پھر دائیں ہاتھ میں کارڈ اور بائیں میں بم برآمد کر لیا۔ کارڈ صوبے دار کے حوالے کیا اور جیتے ہوئے اس کی مندرجات پڑھنے کے لیے جھکا۔ میں نے زبردست پنچ اس کی ناک پر رسید کیا اور بم کو ٹرک میں اچھال دیا۔ گھوسا رکھتے ہی صوبے دار اچھل کر 2 قدم پیچھے گیا۔ اس کی ناک پھٹ پڑ چکی تھی، بلکہ کٹ چکی تھی۔ خون کا فوارہ پھوٹ نکلا تھا۔ میں نے انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ وہاں سے دوڑ لگائی اور 20-25 قدموں کے فاصلے پر جا کر بڑی پھرتی سے زمین پر محفوظ پوزیشن میں لیٹ گیا۔ منہ الٹا لیٹا ہوا تھا، اس حادثے میں میرا پیٹ اور سینہ زمین سے اٹھا ہوا تھا اور میں نے کونیوں کا سہارا لیا ہوا تھا۔ کانوں کو دونوں ہاتھوں سے انتہائی سختی کے ساتھ بند کر لیا تھا۔ چند سانس کے بعد ہی وہاں دھماکوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ زبردست دھماکے ہو رہے تھے۔ اپنی تمام تر احتیاط کے باوجود میں پہلے دھماکے کے ساتھ ہی زمین سے کئی فٹ اوپر اچھلا اور دور جا پڑا۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ خبر نہیں، میں بے ہوش ہو چکا تھا۔ جب ہوش آیا تو اسپتال میں تھا۔ بعد کی اطلاعات کے مطابق معلوم ہوا کہ ہماری فوج اس چوکی پر قابض ہونے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ کمانڈو ون اپنے مشن میں ہر طرح کامیاب رہا تھا۔ اس نے نامعلوم کس طرح عظیم امونیشن ڈپو تباہ کر دیا تھا۔ اس بندے کی لاش کا بھی پتہ نہ چل سکا۔ غالب گمان تھا کہ اس کی شہادت کی آرزو کی تکمیل ہو چکی تھی۔ ماموں جان، میں نے ماموں کی اس طویل اور دلچسپ داستان کو سننے کے بعد کہا۔ جی بیٹے، ماموں جان نے جواب دیا۔ ماموں جان، ایک بات مجھے تمام گفتگو کے دوران میں کھٹکتی رہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں پوچھ لوں۔ میں نے کہا بالکل کیوں نہیں بیٹا، ضرور پوچھو، ماموں جان نے خوش دلی سے جواب دیا۔ ماموں جان، میرے ذہن میں یہ سوال بار بار ابھر رہا ہے کہ ہماری بہادر فوج کے صرف 4 جوان دشمن کی اتنی بڑی فوج کو شکست دے سکنے کی صلاحیت اور جرات رکھتے ہیں، تو پھر وہ 1,00,000 فوجی جو 1971 میں مشرقی پاکستان کے محاذ پر لڑ رہے تھے کیسے شکست کھا گئے؟ کیسے مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا؟ کیسے ساری فوج جنگی قیدی بن گئی؟ کیسے وطن عزیز کی عزت کو بٹا لگا؟ کیسے ہوا یہ سب؟ کیوں ہوا ماموں جان؟ کیا وہ سب کاغذی فوجی تھے؟ کیا آپ ان میں شامل نہیں تھے؟ میں نے کچھ جذباتی لہجے میں سوال کیا۔ ماموں جان کا کھلتا ہوا چہرہ یک دم بجھ سا گیا۔ کوئی اندرونی کرب تھا جس نے انہیں بے چین کر دیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں اداسی چھا گئی، وہ یک ٹک میری طرف دیکھ رہے تھے بڑی گہری نظروں سے۔ معلوم نہیں ان کی نظروں میں کیا تھا کہ میں نے ایک سنسنی سی اپنے جسم میں دوڑتی ہوئی محسوس کی۔ انہوں نے ایک لمبی سانس منہ سے خارج کی اور کہا، یہ بڑی دردناک اور لمبی کہانی ہے بیٹے، اب رات زیادہ ہو گئی ہے، یہ کل سنائیں گے، اب آپ سو جائیں۔ مٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ رات بھر ہم مار دھاڑ سے بھرپور خواب دیکھتے رہے۔ ہم جاسوسی ناولوں کے ہیرو کی طرح ہر مشکل مقام پر بآسانی پہنچ جاتے اور دشمنوں کو ٹھکانے لگا دیتے۔ بندوق کی گولیاں ہمارے لیے اسکرو کی گولیاں ثابت ہوئیں۔ 10-20 گولیاں ہمارے جسم میں پیوست ہو جاتی، پیوست ہو جاتی، مگر ہم پھر بھی زندہ رہتے کیونکہ ہیرو کبھی نہیں مرتا۔ ہم نے دیکھا کہ ہم گلی میں لکڑ والے مکان کی بالکنی میں چھپے ہوئے دشمن کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا چوکنے انداز میں آگے بڑھا چلا آ رہا ہے۔ پھر جیسے ہی وہ ہم سے قریب ہوا، ہم نے بالکنی سے چھلانگ لگائی اور تقریباً اڑتے ہوئے اس کے سر پر جا پہنچے۔ پھرتی سے اس کی گردن دبوچی اور اس کے ساتھ ہی ہماری آنکھ کھل گئی۔ देखा तो पलंग से नीचे फर्श पर पड़े और हमारी हाथों की गिरफ्त में अम्मी जान के पलंग का पाया है। शोर की आवाज़ और पलंग को झटका लगने की वजह से अम्मी जान भी हड़बड़ाकर उठी और पूछने लगी, क्या हुआ क्या हुआ बेटा? हमने कोहनी और घुटने पर लगने वाली चोटों को सहलाते हुए बताया कि हम दुश्मन को गर्दन से दबोचना चाहते थे। छलांग जरा जोर से लगा बैठे, इसलिए नींद की वादी से बाहर पलंग से नीचे आ रहे और दुश्मन जाते जाते अपनी गर्दन की बजाय ये पाया हमारे हाथों में थमा गया है। हमारी दास्तान सुनकर अम्मी जान हंसने लगी और बोली, शायद मामू की गुफ्तगू का असर है कि ख्वाब में भी जंग जारी है। हमने कहा, शायद सुबह होने को थी। करीब की मस्जिद से अजान की सदा बुलंद हुई तो हम नमाज के लिए तैयारी करने लगे। मामू जान भी अपने कमरे से निकल आए थे। हम दोनों घर से बाहर आए और मस्जिद की तरफ गामजन हुए। मामू जान ने कहा, जरा दूर की मस्जिद में चलेंगे, ज़्यादा ख्वाब होगा। हमने पूछा, वो कैसे? कहने लगे कि जब कोई मोमिन नमाज की नीयत से बावजूद होकर अपने घर से निकलता है तो उसे हर कदम पर नेकी मिलती है, इसलिए हम जरा दूर की मस्जिद तक चलेंगे ताकि ज़्यादा सवाब हासिल कर सकें। हमने कहा, तो ठीक है, मस्जिद दरवेश चलते हैं, नमाज भी पढ़ लेंगे और सैर भी हो जाएगी। हम लोग गली से निकले और अलीगढ़ की मार्केट से होते हुए मेन रोड पर आ गए। इस वक्त इक्का दुक्का गाड़ियाँ आ जा रही थी। कंडक्टर अपने मखसूस अंदाज में आवाज़ें लगा रहे थे, कम ही समझ में आता था कि क्या कह रहे हैं। बाएं तरफ सिनेमा का सुर्ख रंग की इमारत सुबह के मलगले अंधेरे में नहुसत ज़्यादा सी लग रही थी। मेन गेट जरा सा खुला था। कुत्तों की एक टोली अटखेलियाँ करती हुई नदी की तरफ से आई और सिनेमा के मेन गेट से अंदर चली गई। हम मामू जान का हाथ थामे सुबह खरामी से चले जा रहे थे। मस्जिद दरवेश का इकलौता मीनार रंग बिरंगे कुमकुमों से जगमगा रहा था। हम लोग मस्जिद में पहुंचे और पहले सुन्नतें अदा की। नमाज जब बाजमात अदा करने के बाद टहलते हुए घर आ गए। अम्मी जान नाश्ते की तैयारी कर रही थी। मामू जान और हम कुरान पाक की तिलावत करने के लिए बैठ गए। नाश्ता लगाने के बाद अम्मी जान ने हमें इतरा दी और हम कुरान पाक बंद करके नाश्ते के लिए पहुंच गए। दस्तरखान हसबे मामूल ज़मीन पर ही बिछाया गया था। हमें ख्याल गुजरा कि मामू जान देश देश घूमने वाले आदमी हैं, यकीनन मॉडर्न स्टाइल से खाते होंगे। लेकिन हमारी हैरत की इम्तिहान आ रही जब वो हमसे भी पहले ज़मीन पर उकड़ू बैठ गए, बिल्कुल देहातियों की तरह, और बिस्मिल्लाह वाला बारी का तिल्ला कहकर खाना शुरू कर दिया। नाश्ते के दरमियान बातों का सिलसिला भी चल निकला। मामू जान बातों के दौरान में बड़ी पुरसरार नज़रों से हमारी तरफ देखते थे। पूछने लगे, अहमद मियाँ कौन सी जमात में हो? हमने कहा, नवी में। पढ़ाई वढ़ाई कैसी जा रही है? ठीक है मामू जान, कौन सा मजमून मुश्किल लगता है? मुश्किल तो कोई नहीं, अलबत्ता इंग्लिश की तरफ से हाथ ज़रा तंग है। कहने लगे, और मैथ कैसा है तुम्हारा? हमने कहा, उससे भी अच्छे ताल्लुकात नहीं है। केमिस्ट्री बायोलॉजी वो तो मुझे ज़रा भी अच्छे नहीं लगते। अच्छा लगता क्या है आपको? मामू जान ने मुस्कुराते हुए पूछा। खाना पीना और खेलना, हमने झट से जवाब दिया। खूब, मामू जान की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। खाने में क्या पसंद है और खेल में क्या? खाने में तो सब कुछ जो मज़ेदार हो और बहुत सा हो, खेल में क्रिकेट और कराटे। हमने कहा, अच्छा कराटे भी आते हैं आपको? मामू जान ने मुसरत अमीज हैरत से कहा। जी, सीनियर ग्रीन बेल्ट है मेरे पास। कौन से क्लब से ताल्लुक है? कोरियन क्वालो कराटे क्लब से। वेरी गुड, ठीक है जी, बाकी इंटरव्यू बाद में, अभी तो आप तैयारी करें, आज आपको सैर कराते हैं। मामू जान ने नाश्ता ख़त्म करके हाथ साफ करते हुए कहा। नाश्ते के बाद हम भी जल्दी से तैयार हुए और उनके हमराह सदर रवाना हो गए। रास्ते में भी मामू जान हमारा इंटरव्यू करते रहे और हम उनका सदर रिगर के स्टाफ पर उतर कर मामू जान वहीं करीब वाक़ा किताबों की एक बड़ी सी दुकान अलबदर बुक कारपोरेशन में गए और दो किताबें खरीद कर हमें तोहफ़तन दी। किताबों में से एक का नाम अलबदर था और दूसरी का खुर्शीद रिसालत की 5 किरणें। बहरहाल तोहफा लेकर हमने उनका शुक्रिया अदा किया। उसके बाद हम मनोड़ा के लिए रवाना हो गए। केमाड़ी से लांच के जरिए मरोड़ा के साहिल पर उतरे और फिर पैदल ही चलते हुए जजीरे के दूसरे सिरे तक पहुंच गए। हमारी बातें रास्ते पर जारी रहीं। मामू जान तो बड़ी अच्छी तबीयत के मालिक थे ही, मगर हमसे मिलकर उन्हें और भी ज़्यादा खुशी हो रही थी। दोपहर तक हम लोग समंदर में नहाते और साहिल की रेत पर लेट कर सन बात करते रहे। दोपहर का खाना वहीं खाया, मछली के बड़े बड़े कतरे फ्राई किए हुए थे, बहुत मज़ेदार खाना था। खाने के दौरान मामू जान ने इंटरव्यू जारी रखते हुए पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनोगे अहमद? हमने कहा, मामू जान पहले तो मेरा ख्याल था कि क्रिकेटर बनूंगा और मुल्क कौम का नाम रोशन करूंगा, लेकिन अब सोचता हूं कमांडो बन जाऊं। ये कमांडो बनते कैसे हैं मामू जान? ये बड़ी खास किस्म की ट्रेनिंग होती है, लेकिन तुम क्रिकेटर बनकर कौम और मुल्क का नाम कैसे रोशन कर सकते हो? लो बड़ी सीधी सी बात है, हमने कहा जब मैं क्रिकेट का अच्छे खरे खिलाड़ी बनूंगा और क्रेज पर अपने फन का जादू जगाऊंगा तो सब कहेंगे कि ये पाकिस्तानी खिलाड़ी है, इस तरह पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का नाम सारी दुनिया में रोशन होगा। पार्ट टू यह इख्तिताम पज़ीर होता है। इस किताब के मजीद वाक़यात के लिए सुनिए पार्ट थ्री।